Vai Hovino, Namo Buddhaya, Jai Bhim. So we've been looking at the three jewels.
तो हम त्रिरत्नों की ओर देख रहे थे.
We've seen them in general.
तो हमने सर्वसामान्य रूप से उन्हें देखा.
We've seen what these three jewels mean with their different colors.
तो अपने अलग-अलग रंगों के साथ इन त्रिरत्नों का क्या अर्थ है ये हमने देखा.
And we've looked a little bit more deeply at who the Buddha is.
और बुद्ध कौन है इसके तरफ हमने और थोड़ी सी गहराई से देखा.
Why he is so precious, why we revere him.
और वो इतने मूल्यवान क्यों हैं और क्यों हम उन्हें नमन या उनका आदर करते हैं.
And now we're going to move on to look at the Dhamma.
और अब हम धम्म को देखने के लिए आगे बढ़ने वाले.
So we reverence the Dhamma and aspire to follow it.
तो नमन करते हैं हम धम्म को और अभिलाषा रखते हैं इसे अनुसरण करने की.
With body, speech and mind until the end.
काया वाचा मन से परिपूर्णता तक.
The truth in all its aspects.
सत्य जो सर्वांग समावेशक है.
The path in all its stages.
मार्ग जो सर्वस्तर समावेशक है.
We aspire to study, practice, realize.
अभिलाषा रखते हैं हम इसका अध्ययन आचरण और साक्षात्कार करने की.
So again, we reverence the Dhamma.
फिर एक बार हम धम्म को नमन करते हैं.
We realize that the Dhamma is something way beyond us.
तो हम ये जानते हैं कि धम्म ऐसा कुछ है जो हमसे बहुत परे है.
Something so wonderful that it's beyond our reach.
तो कुछ ऐसा अद्भुत जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है.
Just like Mount Kanchenjunga hanging above the clouds.
तो जैसे कंचनजंगा पर्वत जो है वो बादलों के ऊपर झूल रहा है.
So yes, we feel that distance.
तो हम उस अंतर को महसूस करते हैं.
But we're not happy to let a distance remain.
लेकिन हम इस बात के लिए खुश नहीं है कि ये अंतर जैसा है वैसा ही बना रहे.
We want to close the gap.
और हम इस अंतर को कम करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं.
So we aspire to follow the Dhamma.
तो इसलिए हम धम्म का अनुसरण करने की अभिलाषा रखते हैं.
We want to move from where we are to the Dhamma.
तो हम जहाँ हैं वहाँ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम धम्म तक पहुँचना चाहते हैं.
Personally, I'm very fond of climbing mountains.
तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे पहाड़ों पे चढ़ना बेहद पसंद है.
I've never been up Everest or Kanchenjunga.
तो मैंने एवरेस्ट या कंचनजंगा की चढ़ाई कभी नहीं की है.
I'm not a rock climber.
तो मैं कोई वो पर्वतारोही नहीं हूँ.
But in Britain, I live in a part of the country called Wales.
लेकिन ब्रिटेन में मैं एक वेल्स नाम का देश है उसके एक भाग में रहता हूँ.
And it's well very hilly. It's not mountains really, but high hills.
तो वहाँ बड़े-बड़े पहाड़ तो नहीं है पर ऊँचे-ऊँचे ऐसे टीले हैं.
So I like to look up at the mountains.
तो मुझे उन पहाड़ों की ओर देखना पसंद है.
But as soon as I see the mountain, I want to go to the top.
लेकिन जैसे ही मैं उन पहाड़ों को देखता हूँ मुझे उसके शिखर पर पहुँचने की इच्छा होती है.
And whenever I can, I climb up to the top.
और जब जब मुझसे संभव होता है मैं उसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ.
Yes, it's wonderful to look at the mountain and glory in its height.
तो पहाड़ों की ओर देखना और उसकी जो ऊंचाई है उसकी तरफ देखना बहुत ही अद्भुत होता है.
But we shouldn't just stay at the bottom.
लेकिन हमने सिर्फ उस पहाड़ के तल तक ही वहाँ पे खड़े नहीं रह जाना चाहिए.
Again, as I said yesterday, this is the difference between the Buddhist attitude and so many other religious attitudes.
और जैसे कल मैंने कहा यही मतलब बौद्ध दृष्टिकोण में और अन्य धर्मों के दृष्टिकोणों में अंतर है.
Yes, we see the goal as very, very distant.
तो हम ये देखते हैं कि हाँ हमारा ध्येय जो है हमसे बहुत दूरी पर है.
But we commit ourselves to closing the gap.
लेकिन हम अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं कि वो अंतर जो है वो हम मिटा देंगे.
To see the goal is to want to achieve it.
तो जब हम ध्येय को देखते हैं हमारे मन में अभिलाषा करते हैं कि उसे हम हासिल भी करेंगे.
So we see the Dhamma as something so wonderful, but we want to follow it.
तो हम देखते हैं कि धम्म बहुत ही अद्भुत ऐसा कुछ है और हम उसका अनुसरण भी करना चाहते हैं.
What following means, we'll find out in a minute.
तो अनुसरण करना यानी क्या ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं.
But we want to follow it with body, speech and mind until the end.
लेकिन हम उसका अनुसरण काया वाचा और मन से करना चाहते हैं और वो भी अंत तक करना चाहते हैं.
And as I've already said on the first day, body, speech and mind from a Buddhist point of view means with every part of us.
तो जैसे मैंने पहले भी कहा था काया वाचा और मन का तात्पर्य है कि हमारे हर हिस्से से.
Because so often religion is a matter of just speech.
क्योंकि अक्सर धर्म जो है केवल शब्दों का ही मतलब खेल बनना रहता है.
Or just the body.
या सिर्फ काया का.
I remember that when I was a child.
और जब मैं छोटा बच्चा था उस समय की बात मुझे याद है.
On Sunday, everybody went to church.
तो रविवार को सब लोग चर्च जाया करते थे.
And on the, at church, they were praying to God and promising to be good.
और वो ईश्वर की प्रार्थना करते थे और उन्हें वचन देते थे कि हम अच्छा बनेंगे.
But as soon as they got home, even before they got home, they were just as normal.
और घर पहुंचते या उससे भी पहले वो जैसे सामान्य थे वैसे बन जाते.
That's religion in most cases.
और अक्सर धर्म ऐसा ही होता है.
The tongue does a lot of work, but nothing else does.
तो जीभ जो है बहुत काम कर लेती है लेकिन और कुछ दूसरे हिस्से नहीं करते.
Or you make offerings with your body.
या फिर हम अपने शरीर से कुछ अर्पण करते हैं.
Coconuts.
नारियल देते हैं.
अगरबत्ती.
अगरबत्ती देते हैं.
माला.
माला देते हैं.
But that's it, just the body.
तो सिर्फ शरीर ही आपका कार्यरत है.
From a Buddhist point of view, it's got to be the mind as well.
तो बौद्ध दृष्टिकोण में मन का भी उसमें समावेश होना चाहिए.
The mind means, as you remember, it's here, it's the heart.
और मन अगर आपको याद हो तो आपके हृदय के पास वो शरीर में यहाँ स्थित है.
Sometimes in Buddhism, when we bow to the shrine, we go like this.
तो बौद्ध धर्म में जब कभी हम पूजा स्थान में प्रणाम करते हैं तो हम इस तरह करते हैं.
So, body, speech, mind.
तो इसका अर्थ होता है काया वाचा और मन.
And then we bow.
और उसके बाद हम नमन करते हैं.
So we're making it clear we're bowing with the whole of us.
तो हम ये तसल्ली कर लेते हैं कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व के साथ हम नमन कर रहे हैं.
But we're trying to. We're aspiring to.
या कम से कम हम प्रयास कर रहे हैं या वैसा करने की हम अभिलाषा रखते हैं.
In fact, from a Buddhist point of view, it's something that is explicitly criticized is action with speech and body, but not with mind.
तो बौद्ध धर्म में अक्सर इस बात पे मतलब टिप्पणी या टीका की जाती है कि आप शरीर से या वाचा से कुछ कृति कर रहे हैं पर मन आपका उसमें जुड़ा हुआ नहीं है.
The way you can tell somebody who's really a disciple of the Buddha is that they don't just do things for the sake of appearances.
तो एक बुद्ध के शिष्य को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए कोई चीज नहीं करते.
What they say is what they do.
तो वो जो कहते हैं वो करते हैं.
What they do is what they feel.
और वो जो करते हैं वो करते हैं जो वो महसूस करते हैं.
If we just go through the rituals, we go through the motions, that's not really practicing the Dhamma.
तो अगर हम सिर्फ मतलब पूजा पाठ ऐसा कर रहे हैं या शरीर से कुछ कृति कर रहे हैं तो that's not.
Not really practicing the Dhamma.
तो वो कोई धम्म का आचरण नहीं है.
The Buddha said we must not depend upon rituals and rules.
तो ये जो मतलब पद्धतियां हैं पूजा पद्धतियां हैं या जो नियम है सिर्फ उसी पे अवलंबित हमें नहीं रहना है ऐसे बुद्ध का कहना है.
What we say, what we do should be what we feel.
तो जो हम करते हैं जो हम कहते हैं वो होना चाहिए जो हम महसूस करते हैं.
This is really important.
और ये बहुत महत्वपूर्ण है.
I always feel a bit embarrassed having to say that.
तो ऐसा कहने में मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है.
Because of course I'm saying what we should do, so I should do what I'm saying.
तो क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो कह रहे हैं वो हमें करना चाहिए तो मैं जो कह रहा हूँ वो मुझे भी करना चाहिए.
That's the dangerous thing about teaching the Dhamma.
और धम्म को सिखाने के बारे में ये बहुत ही खतरनाक बात है.
People can easily say to you, "Oh, Subhuti, you gave that wonderful talk the other day."
क्योंकि लोग आपको ऐसा कह सकते हैं सुबुति उस दिन तो आपने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया था.
You know, about being full of Maitree, speaking kindly.
कि मैत्री से परिपूर्ण होना चाहिए आपकी वाचा में ममता होनी चाहिए.
And then look at how you just spoke.
और अभी देखिए आपने किस तरह से बात की.
What can I say?
तो मैं क्या कह सकता हूँ.
But yes, it's very dangerous teaching the Dhamma, isn't it?
तो धम्म को सिखाना या उसके बारे में बात करना बहुत धोखादायक है, खतरनाक.
In a way, that's why I think it's good to teach the Dhamma.
और लेकिन एक तरह से मुझे लगता है कि इसी वजह से धम्म को सिखाना अच्छी बात भी है.
Because you're teaching yourself.
क्योंकि आप अपने आप को भी सिखा रहे हैं.
You're even challenging yourself.
आप अपने आप को भी चुनौती दे रहे हैं.
So, You have to keep an eye on me, and if you hear me saying doing something or saying something that's not what I'm saying to you,
तो आपको मुझ पे नजर रखनी है और आप अगर ऐसा पाते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं या ऐसा कुछ कह रहा हूं जो मैंने नहीं करना चाहिए तो मुझे रोकिए टोकिए
That doesn't apply to Maitreya Nagarjuna. He's not allowed to do that.
लेकिन ये मैत्रेय नागार्जुन के लिए नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकते
One secretary knows more about one than anybody else.
तो एक जो सेक्रेटरी होते हैं वो अपने साथी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं
But yes, we should be consistent.
लेकिन हमने इस बात में सातत्य रखना चाहिए
Our practice of the Dhamma should go all the way through us.
और हमारा जो धम्म का आचरण है वो हम हमारे पूरे अस्तित्व में से आना चाहिए
Of course we're going to fail.
हाँ निश्चित ही हम इसमें अपयशी होंगे
I'm afraid that's guaranteed.
और इसकी गारंटी भी है
Only a Buddha doesn't fail.
सिर्फ बुद्ध ही है जो इसमें असफल नहीं होते
And we all accept that.
और हम इस सब बात को स्वीकार करते हैं
But at least we can acknowledge our failings and try to change.
लेकिन कम से कम हम अपनी कमियों को स्वीकार कर सकते हैं और इम्प्रूव करने का प्रयास कर सकते हैं
But yes, we practice with body, speech and mind until the end.
लेकिन परिपूर्णता तक हम काया वाचा और मन से उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं
The practice of the Dhamma, the following of the Dhamma is a lifetime's work.
तो धम्म का आचरण या अनुसरण करना ये पूरे जीवन का कार्य होता है
In fact, it's been said it's the work of many lifetimes.
और ऐसा भी कहा जाता है कि कई जीवन काल का मतलब कार्य है
To really arrive at Buddhahood involves our whole life.
तो बुद्धत्व तक पहुंचना ये पूरे जीवन का समय उसमें लग जाता है
And you have to keep going.
और आपको चलते रहना होता है
If you want to get to the top of the mountain, you can't go halfway up and then come down and claim you've been to the top.
तो अगर आप पर्वत के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जा रहे हैं आधी दूरी तक आप चले गए और कह रहे हैं कि मैं शिखर तक पहुंच गया
You have to keep on going until you get to the top.
और आपको चलते रहना होता है तब तक जब तक कि आप उस शिखर तक पहुंच नहीं जाते
And you know what it's like climbing up a mountain.
और आप जानते हैं कि एक पर्वत पर चढ़ने का अनुभव क्या होता है
You start off full of energy.
तो आप पूरी ऊर्जा के साथ चलना शुरू करते हैं
The mountain gets steeper.
और पहाड़ जो है वो और ऐसा नुकीला या चढ़ाईदार होता जाता है
Your pack gets heavier.
और आपके जो बस्ते बांधे आपने वो भारी लगने लगते हैं
You begin to think, okay, time to go down, time to stop high enough.
और आपको लगता है कि बस बहुत ऊंचे तक मैं आ गया अब मैंने नीचे जाना चाहिए
But you have to go on till the end.
लेकिन आपको आगे अंत तक जाना पड़ता है
If you want to see the view, you have to go right to the top.
और अगर आप वो नजारा देखना चाहते हैं तो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता है
So we aspire to follow it with the whole of ourselves until it's complete.
तो हम अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं जब तक हम उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं जाते
It's complete when the Dhamma is our experience.
तो वो तब परिपूर्ण होता है कि जब धम्म हमारा अनुभव बन जाता
It's not something distant from us, it's what we are.
तो वो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो हमसे दूरी पर होती है लेकिन वो ऐसा होता है कि वो हम ही बन जाते हैं
So the text then says, The truth in all its aspects, the path in all its stages, we aspire to study, practice, realize.
तो यहाँ पे आगे लिखा गया है सत्य जो सर्वांग समावेशक है मार्ग जो सर्वस्तर समावेशक है अभिलाषा रखते हैं हम इसका अध्ययन आचरण और साक्षात्कार करने की
We'll see in a minute what studying, practicing, realizing means.
तो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि अध्ययन आचरण और साक्षात्कार करना इसका अर्थ क्या है
But what is it we're studying, practicing, realizing?
लेकिन वो क्या है जिसका हम अध्ययन या आचरण कर रहे हैं या जिसका साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं
The truth in all its aspects.
तो सत्य और उसके हर पहलू में
What is the truth?
तो फिर सत्य क्या है
a big question.
तो ये बहुत बड़ा सवाल है
This is a major question that's come down all through history, isn't it?
तो ये इतना बड़ा सवाल है कि ये पूरे इतिहास में से झड़प कर आगे आया है
Of course, it's not the truth in an ordinary sense.
तो ये एक सर्वसामान्य स्वरूप में का सत्य नहीं है
It's not just the truth that it's raining.
तो ये सत्य नहीं है कि बस वर्षा हो रही है
Although it doesn't exclude that.
लेकिन ये उसमें भी समावेश है उससे अलग नहीं किया जा सकता
It's not the truth of facts.
तो ये तथ्यों का सत्य नहीं है.
Of course, the truths of facts are included.
तो तथ्यों का सत्य भी उसमें समाविष्ट है.
But what exactly the truth is, it's not really possible to say.
लेकिन सत्य क्या है ये बताना संभव भी नहीं है.
So this means that we must clarify what knowing the truth means.
तो इसका अर्थ ये होता है कि सत्य को जानना क्या है इसका स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है.
And this relates to a question that we had yesterday about needing to be an intellectual to understand the Dhamma.
तो ये कल के सवाल तक आता है कि धम्म को मतलब समझने के लिए बौद्धिकता की आवश्यकता.
Well, I've already distinguished between what I call knowledge and wisdom.
तो कल ही मैंने इस बात में अंतर किया था कि ज्ञान और प्रज्ञा इन दो बातों में क्या अंतर है.
Knowledge is knowledge about the facts in the world.
ज्ञान होता है कि जो दुनिया में जो चीजें हैं उनके विषय में ज्ञान.
Knowledge is science.
ज्ञान मतलब विज्ञान.
Knowledge means understanding the laws that govern nature.
तो निसर्ग को जो नियम जिन नियमों से निसर्ग का नियमन होता है उन नियमों को जानना.
So knowledge is about the world.
तो ज्ञान जो है वो इस विश्व के विषय में है.
And it's very important, of course.
और निश्चित ही ये बहुत महत्वपूर्ण भी है.
The huge expansion of knowledge in the last 200 or 300 years has been of huge benefit to the world.
तो पिछले 200-300 सालों में जो ज्ञान का विस्तार हुआ है उससे दुनिया को बहुत फायदा पहुंचा है.
But no amount of knowledge is wisdom.
लेकिन कितनी भी मात्रा में ज्ञान क्यों ना हो वो प्रज्ञा नहीं है.
So what is the faculty of knowledge?
तो फिर ज्ञान का मतलब क्षेत्र क्या है?
Well, it's intellect.
तो वो होता है बौद्धिकता.
Knowledge is about concepts.
तो knowledge जो है ज्ञान जो है संकल्पनाओं को समझना है.
And yes, we use our mind, our intellects, our brains, you could say, to know.
तो हम जो हमारी बौद्धिकता है वो किसी चीज को समझने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं.
What is the faculty of wisdom?
तो विज्ञान का प्रज्ञा का क्षेत्र क्या है?
It's quite difficult to say.
तो इसे बताना बेहद मुश्किल है.
But it's very interesting that in the Buddha Dhamma, all the terms that are used for gaining wisdom are to do with sight.
लेकिन ये भी रोचक है कि बौद्ध धर्म में प्रज्ञा को पाने के लिए जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो सब दृष्टि से संबंधित है.
So for instance, there's the word that you must have heard, vipassana.
तो जैसे कि आपने शब्द को सुना होगा विपश्यना.
You've probably heard it in the Pali form, vipassana.
या पाली के इसमें आपने सुना होगा विपस्सना.
But in Sanskrit it's vipassana.
लेकिन संस्कृत में वो विपश्यना हो जाता है.
And that's to do with seeing into.
और इस शब्द का संबंध भी है जो देखने से है मतलब किसी चीज को भेद कर देखने से.
Or the word drishti is used, samyak drishti.
कभी कभी दृष्टि या सम्यक दृष्टि इस शब्द का प्रयोग होता है.
Again, it's seeing, it's vision.
फिर एक बार ये देखने से ही संबंधित है ये दृष्टि है.
And there are many other terms of this kind, darshana.
और इसी तरह के अन्य शब्द भी है जैसे दर्शना.
So that's really interesting.
तो ये रोचक है.
Because what the Buddha is using it is the faculty of sight as a metaphor for seeing the truth.
तो क्योंकि बुद्ध क्या कर रहे हैं दृष्टि का रूपक एक इस्तेमाल कर रहे हैं कि सत्य को जानने के लिए.
So what's the difference between seeing with the eye and knowing with the brain?
तो फिर आंखों से देखना और मन से जानना इन बातों में अंतर क्या है?
Well, when you know something with the brain, you translate your knowledge of the world into concepts.
तो जब आप किसी चीज को देखते हैं तो दुनिया के बारे में जो आपकी जानकारी है वो आप एक संकल्पना के स्वरूप में उसका रूपांतर करते हैं मन में.
And then you bring those concepts together and you form principles, you form laws and so on.
फिर आप इन संकल्पनाओं को इकट्ठा लेके आते हैं और आप उनका नियम बनाते हैं और इस तरह से और भी चीजें.
But it's not the world.
लेकिन ये दुनिया नहीं है.
The concept is not the world.
तो संकल्पनाएं जो है वो दुनिया नहीं है.
So it's often said it's like having a map.
तो अक्सर कहा जाता है कि एक नकाशा जो है आपके पास उसे उसके जैसा है.
The map is not the countryside.
तो जो नक्शा होता है वो कोई देश नहीं होता.
I can give you a map of Bhaja village and Bhaja retreat center.
तो मैं आपको भाजा शिविर केंद्र का या भाजा गांव का नक्शा दे सकता हूँ.
But it doesn't include the buffalo that you meet on the way.
लेकिन उस नक्शे में जो रास्ते पे आपको भैंस मिलती है वो भैंस नहीं होती.
It doesn't include the way the monsoon has swept away the bund.
तो बारिश के पानी से जो वो मिट्टी का बांध बह गया है वो उस नक्शे में नहीं होता है.
It doesn't include how you have to get across this particular stream.
तो वो जो पानी का बीच में झरने आते हैं छोटे छोटे उसमें से आपको कैसे गुजरना है वो नक्शे में नहीं होता.
The map is not the countryside.
तो जो नक्शा होता है वो गांव या देश नहीं होता.
The map is very, very useful.
तो नक्शा बहुत काम की चीज होती है.
But it's not the countryside.
लेकिन वो गांव नहीं होता.
That's the point.
और यही मुद्दा है.
You need to actually see for yourself.
और फिर आपको खुद उसमें देखना होता है.
The eye is direct.
तो आंख जो है वो प्रत्यक्ष होती है.
It sees what it sees.
तो आंख जो देखती है वो देखती है.
Intellect is indirect. It abstracts and then organizes.
तो बौद्धिकता जो होती है वो अप्रत्यक्ष होती है. वो चीजों को मतलब अलग अलग चीजों में बांट के फिर वो एक स्वरूप प्रकट करती है.
Now of course the eye doesn't see the truth.
तो आंख जो है वो सत्य को नहीं देखते.
It sees whatever hits the retina and goes into the optic nerve and so on.
तो आंख की पुतली से जो भी स्पर्श करता है और नसों के द्वारा दिमाग तक जो छवि पहुंचती है वो छवि को वो देखता है.
But using that metaphor of seeing helps us to understand the difference between wisdom and knowledge.
लेकिन देखने का ये जो रूपक होता है वो हमें प्रज्ञा और ज्ञान इसके बीच में का अंतर समझने में मदद करता है.
Knowledge is indirect.
तो ज्ञान जो है वो अप्रत्यक्ष होता है.
It's abstract.
वो सिर्फ समझा जा सकता है.
Wisdom is direct.
और प्रज्ञा जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है.
You just see.
आप सिर्फ देखते हैं.
You see without prejudice, without distortion.
बिना किसी पूर्वग्रह के बिना किसी चीज को तोड़े मरोड़े आप उसे देखते हैं.
You see the truth.
आप सत्य को देखते हैं.
Not just the truth of what is there.
तो सिर्फ वहां पर क्या है इसी का सत्य नहीं.
But the real nature of what is there.
लेकिन जो है उसका सत्य स्वरूप क्या है.
So what does that mean?
तो इसका अर्थ क्या होता है.
Well, I'm going to have to take us into knowledge in order to understand that.
तो मैं बौद्धिकता के क्षेत्र में आपको लेकर जाने वाला हूँ इसे समझने के.
I'm going to have to use words and concepts to explain what you see directly with wisdom.
तो मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आप प्रत्यक्ष रूप से जिन चीजों को देखते हैं प्रज्ञा के को समझने के लिए.
That's the value of knowledge.
तो ये ज्ञान का मतलब महत्व है.
It helps us to understand what we must see directly.
तो वो हमें ये समझने के लिए मदद करता है कि हमने प्रत्यक्ष क्या देखना चाहिए.
So what is it in conceptual terms that we see directly with wisdom?
तो प्रज्ञा के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से क्या देखते हैं वो संकल्पनाएं क्या हैं?
I hope this is not too abstract for you, but let's try.
तो आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं देख नहीं सकते.
So what,
तो ऐसा नहीं है.
What is the truth?
तो फिर सत्य क्या है.
But there are many ways in which the Buddha expressed this.
तो बहुत से तरीके हैं जिसमें बुद्ध ने इसे बताया.
But I'll tell you one of the major ways in which he communicated the nature of the truth.
लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा कि जिसके द्वारा उन्होंने सत्य को पहुंचाने का प्रयास किया है.
The first thing is he said that everything that arises is impermanent.
तो पहली बात जो उन्होंने कही है कि हर वो चीज जो निर्माण होती है वो अनित्य है.
Everything that we can experience, everything that we can know is impermanent.
तो हर चीज जिसका हम अनुभव ले सकते हैं या जिसे हम जानते हैं वो अनित्य है.
Everything comes into existence, passes away again.
और हर चीज अस्तित्व में आज आती है और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है.
It comes into existence because there are certain conditions for it.
वो अस्तित्व में आती है क्योंकि उसके अस्तित्व में आने के लिए कुछ परिस्थितियां कारणीभूत होती है.
Sooner or later, those conditions end.
आज नहीं तो कल वो परिस्थितियां खत्म हो जाती है.
And that thing ceases.
और इस वजह से वो उस चीज का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है.
It's been wonderful being here before the monsoon and as the monsoon hits.
तो बारिश आने से पहले यहाँ होना बहुत अच्छा होता है और जैसे ही बारिश आती है
I always come on about June the 10th because the monsoon is officially supposed to start in this area on June the 6th.
तो मैं 10 जून को यहाँ पे आता हूँ क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर बारिश जो है वो 6 जून को आने की संभावना होती है.
Unfortunately, the monsoon is usually postponed.
लेकिन अक्सर जो है मानसून के आने में देरी होती है.
It's even worse than the old railways used to be.
तो पुरानी जो गाड़ियाँ की मतलब समय सारनी होती है उससे भी ये बुरा है.
One year I did come and it had been preponed, but that was another matter.
तो एक ही बार ऐसा हुआ था कि मैं आ गया था लेकिन बारिश उससे पहले ही आ गई थी.
Anyway, this time you know that the monsoon was very late indeed, yeah?
और आप जानते हैं कि इस साल जो है बारिश बहुत ही देरी से आई है.
So when I came here, everything was really parched, really dry.
तो जब मैं यहाँ पे आया तो सब कुछ एकदम सूखा हुआ था.
Because the conditions for plants to grow did not exist.
क्योंकि पेड़ पौधे जिन परिस्थितियों में बढ़ते हैं उनका विकास होता है वो परिस्थितियां उपलब्ध नहीं
थी. Down came the rain.
और फिर तब बारिश आई.
Slowly at first, but then more and more heavily.
तो पहले एकदम रिमझिम बारिश थी और फिर एकदम मूसलाधार जोर से बारिश शुरू हो गई.
Suddenly there's greenery everywhere.
और अचानक फिर पूरे तरफ जो है हरियाली छा गई.
There's flowers coming into bloom.
और फूल जो है वो खिलने लगे.
The only thing that ceases is mangoes.
तो एक ही चीज है जिसका मतलब जो खत्म हो गई थी वो यानी आम.
That's very disappointing to me.
और मुझे बहुत बुरा लगा.
But yes, everything suddenly comes into flower, into blossom.
और अचानक सब मतलब खिलने लगे मतलब बढ़ने लगे बाहर आ गई.
The birds start getting married.
तो पंछियों ने शादियां करना शुरू कर दी.
The snakes come out.
और सांप बाहर निकलने लगे.
The crabs start coming out.
और केकड़े बाहर निकलने लगे.
All of that happens in dependence on the rain.
तो ये सब होने लगा लेकिन इन ये सब जो है बारिश पर निर्भर था.
And that goes on for many months.
तो कई महीनों तक ये चलता रहेगा.
And then as the year goes on, it gets drier and drier and drier.
जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो वापस सूखा सूखा और सूखा हो जाएगा.
So by the time I come back in June next year, it will be parched all over again.
और अगले साल जब मैं जून में यहाँ पे वापस आऊंगा तब तक वो पूरा ऐसे सूखा यहाँ पे छाया रहेगा.
Everything is like that.
तो हर चीज ऐसी ही होती है.
When the conditions are there, it arises.
तो जब परिस्थितियां वहां पर होती है वो निर्माण होती है.
When the conditions go, it ceases.
तो जब वो परिस्थितियां वहां से हट जाती है तो वो उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है.
You look at this retreat.
तो आप इस शिविर की ओर देखिए.
Here we all are together.
तो आज यहाँ पर हम सब इकट्ठा हैं.
So many conditions have brought it together.
और बहुत सारी परिस्थितियों ने इसे इस तरह यहाँ इकट्ठा लाया.
There's a very big condition just sitting here.
तो एक बहुत बड़ी परिस्थिति यहीं बैठी है.
There are a number of other conditions as well.
और बहुत सारी अन्य परिस्थितियां भी यहाँ है.
In fact, each of you is part of the condition for this retreat.
तो आप में से हर एक व्यक्ति इस शिविर के लिए एक परिस्थिति है.
And in the case of each of you, there are so many other conditions that have created this condition.
और आप में से प्रत्येक के लिए वहाँ पे अन्य परिस्थितियां हैं जिसने इस परिस्थिति का निर्माण किया.
We could even go back to your parents and your grandparents and so forth.
तो हम आपके माता पिता या आपके दादा दादी या उनसे भी पहले तक की परिस्थिति तक जा सकते हैं.
But sometime tomorrow, the conditions will go.
और कल किसी वक्त ये परिस्थितियां जो है वो खत्म हो जाएगी.
The shrine hall will be empty.
और ये पूजा स्थान जो है वो खाली हो जाएगा.
The retreat will have finished.
और ये शिविर जो है वो समाप्त हो जाएगा.
Everything is like that, the Buddha said.
हर चीज ऐसे ही है बुद्ध कहते हैं.
So this is the first fact, this is the first conceptual expression of the Buddha's direct experience.
तो ये पहला मतलब तथ्य है बुद्ध की जो संकल्पना जिस संकल्पना का उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव लिया था उसमें से ये पहला है.
So, secondly, the Buddha said, there's nothing behind our experience that is permanent.
तो बुद्ध दूसरी बात ये कहते हैं कि जो भी हमारे अनुभव जो नित्य होते हैं उसके पीछे कुछ भी नहीं होता.
He said, there's no Atman.
तो वो कहते हैं कि आत्मा नहीं होता.
In fact, he taught what is called anatman.
लेकिन उन्होंने अनात्म के विषय में शिक्षा दी है.
He said especially this is true of us.
और वो कहते हैं कि विशेषता ये हमारे बारे में सत्य है.
There's nothing in here that is fixed.
तो हमारे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पक्का है ठोस है.
There's no eternal essence.
तो कोई भी ऐसे मतलब चिरकाल तक मतलब अनंत ऐसा सार नहीं है.
There's nothing that stands aside from the processes of change and does not include itself in them.
तो ऐसा हमारे भीतर कुछ भी नहीं है जो बदलाव की इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है और जो हमसे अलग ऐसा खड़ा रहता है.
Yes, so this Atman, of course, was a direct attack. Anatman was a direct attack on the religion of his time.
तो उस वक्त के जो धर्म थे जिसमें आत्मा ये संकल्पना थी बुद्ध की, अनात्म की संकल्पना ने उस पे एकदम हमला बोल दिया.
Every other religion teaches that there are some sort of eternal essences.
तो उस वक्त का हर धर्म ये सिखाता था कि कुछ ना कुछ हमारे भीतर है जो मतलब अनंत है, हमेशा रहने वाला है.
There's something in us that is eternal.
तो हमारे भीतर ऐसा कुछ है जिसका जीवन अमर्याद है.
There's something in the universe that is eternal.
तो विश्व में ऐसा कुछ है जो अनंत है.
So the Buddha said, well, show me these eternal things.
तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, मुझे ये अनंत चीजें आप दिखाइए.
Go and have a look and see if you can find one.
तो आप जाइए और ढूंढिए और देखिए कि क्या आपको ऐसी कोई एक चीज मिलती है.
You know, I could do a surgical experiment on Bharti.
I won't allow. तो आप जानते हैं मैं भारती के ऊपर एक मतलब चिकित्सक प्रयोग कर सकता हूँ.
She has to translate me. No. But if I did that surgical dissection of Bharti, I wouldn't find an Atman.
तो अगर मैंने भारती को ऐसी चीरफाड़ कर दी तो मुझे कोई आत्मा नहीं मिलेगा.
Even if I looked deeply into her mind, I wouldn't find an Atman.
तो बहुत गहरे से भी मैंने उसके मन में अगर झांक कर देखा तो भी मुझे आत्मा नहीं मिलेगी.
So the Buddha says, it's just an idea.
तो बुद्ध कहते हैं ये सिर्फ एक संकल्पना है.
It doesn't correspond to any possible experience.
तो कोई भी ऐसा मतलब अनुभव नहीं है जिसके साथ ये इसे संबंधित किया जा सकता.
So he said, it's just made up.
तो वो कहते हैं इसे सिर्फ निर्माण किया गया है.
He said it's useless because it doesn't refer to anything that we can experience.
तो वो कहते हैं कि ये संकल्पना मतलब कुछ काम की नहीं है क्योंकि हम इसे अनुभव नहीं कर सकते.
You could say that the Buddha was an empiricist.
तो बुद्ध ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध अपनी चीज को मतलब आपके ऊपर पक्की तरह से आपको समझा देने वाले व्यक्ति थे.
Any of you know Western philosophy, you know the term empiricist.
तो अगर आप पश्चिम के तत्वज्ञान को जानते हैं तो आप ये शब्द को जानते हैं.
Science is empirical.
तो विज्ञान जो है वो empirical है, मतलब अपनी चीज को आपको समझा देता है, अनुभववादी है.
It deals with what you can actually experience.
तो आप जो कुछ भी अनुभव कर सकते हैं उसके साथ में इसका संबंध होता है.
Well, the Buddha said, what you can't experience, you can't know.
तो बुद्ध कहते हैं जिस चीज का आप अनुभव नहीं ले सकते उस चीज को आप नहीं जान सकते.
It's just a set of sounds.
तो ये सिर्फ शब्दों का फिर एक संच बनकर रह जाता
है. आत्मान. It doesn't mean anything.
तो आत्मा ये इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये सिर्फ शब्दों का एक संच है.
It doesn't refer to anything.
ये किसी भी चीज से उसका संबंध नहीं है.
So the same with God.
तो ऐसा ही ईश्वर के साथ भी है.
But there's no content to those words.
तो इस शब्दों के लिए कुछ भी मतलब साहित्य नहीं है.
It doesn't refer to anything that you can know.
तो ऐसी कोई चीज नहीं है इन शब्दों के साथ जुड़ी जिसको आप जान सकते हैं.
So the Buddha said that what we that everything is contained within our 6-foot body.
तो बुद्ध कहते हैं जो कुछ भी है वो हमारे 6 फुट के शरीर के भीतर है.
Or 5'9" body, or 5'6", or 5'2", whatever.
या अलग अलग ऊंचाई के शरीरों में.
In other words, it's what we know with our senses, with what we know with our experience, that is the basis for freedom.
तो वो कहते हैं कि हमारे मतलब जो इंद्रियों के द्वारा या हमारे अन्य स्नायु संवेदों के द्वारा जो हम जान सकते हैं वही हमारे अनुभवों का आधार होता है.
Our thoughts, our ideas can help us to discover that truth in our experience.
तो हमारे जो विचार है, हमारी जो संकल्पनाएं हैं, वो उस सत्य को जानने के लिए हमारी सहायता कर सकती है.
But our thoughts cannot be truth themselves.
लेकिन हमारे विचार अपने आप में सत्य नहीं हो सकते.
आत्मन इज जस्ट अ थॉट.
तो आत्मा केवल एक विचार है.
God is just a thought.
ईश्वर केवल एक विचार है.
It may have good meaning for some people.
तो कुछ लोगों के लिए इसका अच्छा अर्थ हो सकता है.
But the Buddha says that good meaning could be better put in another way.
लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अच्छे अर्थ को दूसरे तरह से भी समझाया जा सकता है.
So the Buddha said, do not think in terms of yourself as having an eternal soul.
तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे अंदर कोई एक अनंत रहने वाली ऐसी कोई आत्मा है, इस तरह से मत सोचिए.
Because that means you can't change beyond a certain point.
क्योंकि उसका अर्थ ये होता है कि एक मर्यादा के बाद फिर आप में परिवर्तन नहीं हो सकता है, आप बदल नहीं सकते.
But this is one of the points that Baba Sahib makes in the Buddha and his Dhamma.
और बुद्ध और उनका धर्म इस ग्रंथ में यही एक मुद्दा है जो बाबा साहब भी उठाते हैं.
He makes the point that the teaching of shunyata, which means the teaching of anatta, simply means you can change.
तो वो कहते हैं कि अनात्म की जो शिक्षा है या शून्यता की शिक्षा है, उसका ये अर्थ होता है कि आप में बदलाव की क्षमता है.
And of course he was very interested in change.
और निश्चित ही वो बदलाव में बहुत ही रुचि रखते थे.
And he knew all about ideas that created so much evil.
और वो उन कल्पनाओं को भली भांति जानते थे जिन कल्पनाओं की वजह से इतनी बुराई निर्माण हुई है.
Because the idea of caste is just such an fixed idea.
क्योंकि जाति की संकल्पना ये इसी तरह की एक मतलब पक्की ठोस बैठी हुई ऐसी एक संकल्पना है.
The baby doesn't want to stop listening to the Dhamma.
तो वो बच्चे को बाहर ले जा रहे, वो रो रहा है क्योंकि वो धम्म सुनना चाहता है.
But yes, Baba Sahib knew that these ideas like caste or Atman, they do so much evil.
तो बाबा साहब जानते हैं कि ये जाति या आत्मा, ये जो संकल्पनाएं, इससे काफी मतलब बुराइयां निर्माण होती है.
Because you believe there's something fixed about reality, you don't change, you don't work.
क्योंकि जब आप ऐसा मान लेते हैं कि ये सत्यता है और ये मतलब पक्की है, तो फिर आप उसको बदलने का प्रयास नहीं करते.
So this is the truth in conceptual terms.
तो ये संकल्पनाओं के स्वरूप में एक सत्य है.
There's nothing that is not. There's nothing that is permanent.
तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नित्य है.
Everything is impermanent.
तो हर एक चीज जो है वो अनित्य है.
Then there's nothing that is outside the process of change and that is eternal.
तो बदलाव की प्रक्रिया से बाहर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि अनंत है.
There's anicca, anatma.
तो अनित्यता है और अनात्म है.
These are in some ways the heart of the Buddhist philosophy.
तो एक तरह से बौद्ध जो तत्वज्ञान है उसका ये बातें सार है.
These are the major differences at the philosophical level between Buddhism and every other religion.
तो तत्वज्ञान के मतलब स्वरूप में बौद्ध धर्म में और अन्य धर्म में ये एक बहुत बड़ा अंतर है.
This is important to know.
और ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है.
Because of course Buddhism comes from the same culture as other Indian religions.
क्योंकि भारत के जो अन्य धर्म जिस संस्कृति से आए हैं, बौद्ध धर्म भी उसी संस्कृति से निर्माण हुआ है.
And there are many features of Buddhism that are quite similar to, for instance, what you'll find in Hinduism.
तो बौद्ध धर्म की बहुत सी ऐसी बातें जो है जो आप हिंदू धर्म में पाते हैं, उससे मिलती जुलती भी है.
We have an image of the Buddha, they have an image of some other figure.
तो हमारे पास बुद्ध की मूर्ति है, उनके पास किसी और ईश्वर की मूर्ति होती है.
We bow down, they bow down.
तो हम नमन करते हैं, वो भी नमन करते हैं.
So what is the difference?
तो फिर अंतर क्या है?
Anatta.
तो अनात्म है.
That is the difference.
ये अंतर है.
There's nothing fixed. There's no essence.
तो कुछ भी जो बात है वो पक्की नहीं है, वो सार नहीं है.
It's extraordinary. The Buddha realized this 2,500 years ago.
और ये बहुत ही मतलब चमत्कारी बात है कि 2,500 साल पहले बुद्ध ने इसे जाना था.
In the West, this sort of understanding in philosophy only began to arise in the 19th century.
तो पश्चिम के देश में इस तरह के तत्वज्ञान को समझा जाना केवल 19वीं शताब्दी में ही शुरुआत हुई उसकी.
And it's a very modern understanding, you could say.
और आप ऐसा भी कह सकते हैं ये बहुत ही आधुनिक ऐसी समझ है वहाँ.
But against all the background of his time, the Buddha saw this.
लेकिन उनके समय की जो भी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के विरुद्ध भी बुद्ध ने इसे देख लिया था.
And apparently he saw it directly.
और आप ये भी देख सकते हैं कि आप उन्होंने इसे प्रत्यक्ष स्वरूप से देखा.
He didn't think it.
उन्होंने इसके विषय में सोचा नहीं.
At the moment, Maitreya Nagarjuna is preparing his PhD.
तो इस समय मैत्रेय नागार्जुन जो है अपनी पीएचडी का अभ्यास कर रहे हैं.
Even though, of course, a PhD doesn't make you wise.
So, भले ही PhD आपको प्रज्ञा नहीं देगी.
But we're studying together a very important Western philosopher.
और एक हम दोनों एक साथ जो है एक पश्चिम के एक तत्ववेत्ता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं.
His name is Schopenhauer.
और उसका नाम है Schopenhauer.
As a German philosopher of the early 19th century.
और 19वीं शताब्दी के शुरुआती का वो एक जर्मन तत्ववेत्ता है.
And he called himself a Buddhist.
और वो अपने आप को बौद्ध कहता है.
He's perhaps the first person that we know of who called himself a Buddhist in the West.
और पश्चिम में शायद वो पहला व्यक्ति है जिसके बारे में हम जानते हैं जो अपने आप को बौद्ध कहता है.
And we're finding that much of his philosophy comes very close to the Buddha.
और हम देखते हैं कि उसके बहुत सा जो उसका तत्वज्ञान है जो बुद्ध के बहुत करीब है.
And he himself said that.
और वो खुद भी ऐसा कहता है.
And towards the end of his life, he said that the best religion is Buddhism.
और अपने जीवन के अंतकाल में वो ऐसा कहता है कि सर्वोत्तम जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है.
And he bought a Buddha murti and had it on a place of honor in his study.
तो वो बुद्ध की मूर्ति के आगे नमन किया करता था और उसका जो अभ्यास करने का जो कमरा था उसमें बुद्ध की मूर्ति थी.
But yes, he said, well, I've arrived at some understanding through my intellect.
लेकिन वो ऐसा कहता है कि कुछ समझ तक मैं अपनी बुद्धिकता के माध्यम से पहुंचा हूँ.
But the Buddha arrived there by direct insight.
लेकिन बौद्ध जो है प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि के माध्यम से वहां तक पहुंचे हैं.
So yes, the Buddha saw these truths so long ago.
तो बुद्ध ने बहुत समय पहले ही इस सत्य को जान लिया था.
And the world still needs to absorb them.
और इस सत्य को अपने भीतर सोखने की विश्व को अभी भी आवश्यकता है.
Because if we understood them, we would be free.
क्योंकि अगर हम उसे अच्छे से जान लेंगे तो हम विमुक्त या स्वतंत्र हो जाएंगे.
Nonsense like social hierarchy and something and so forth would just disappear.
और समाज की ये जो वर्ण व्यवस्था या मतलब स्तर व्यवस्था है ये गायब हो जाएगी.
But there's one more sign of the truth that I haven't mentioned.
लेकिन सत्य का एक और भी पहलू है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है.
So we mentioned anicca, anatma.
तो हमने अनित्यता का जिक्र किया, अनात्म का जिक्र किया.
There's a third which is said in one word as dukkha.
तो तीसरा जो है जिसे एक ही शब्द में जिसका वर्णन किया जाता है वो है दुख.
Now this is easily misunderstood.
तो इसे बहुत आसानी से इसके बारे में गलतफहमी हो जाती है.
The Buddha is not saying that everything is just suffering.
तो बुद्ध ये नहीं कहते कि हर चीज जो है वो बस दुख ही है.
Because we know in our own experience there's some happiness, some pleasure.
क्योंकि हमारे अपने अनुभव में हम कुछ खुशी का भी आनंद का भी अनुभव करते हैं.
There's the pleasure of a good breakfast, for instance.
तो एक अच्छे नाश्ते का आनंद होता है.
There's the pleasure of a good friendship.
तो एक अच्छी मित्रता का आनंद होता है.
There's so many pleasures in life.
और जीवन में कई अन्य तरह के आनंद होते हैं.
But what the Buddha is saying is you cannot avoid pain.
लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि आप दुख को टाल नहीं सकते.
There's always some pain in life.
और जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ दर्द भी होता है.
And we cannot escape some pain.
और कुछ ना कुछ दुख से हम बच नहीं सकते.
At times we can't escape a lot of pain.
और कभी कभी बहुत सारी मात्रा में जो दुख है उससे भी हम बच नहीं सकते.
But what he's really getting at is that if we do not realize that everything is impermanent, if we do not realize that there is anatta, no atta, then we will cling on.
लेकिन महत्व की बात क्या है कि अगर हम अनात्म को नहीं जानते, अनित्य है ये नहीं जानते, तो हम चीजों को जकड़ कर रखना मतलब शुरू कर देते हैं.
And if we cling on to things, we will suffer.
और अगर हम किसी चीजों को मतलब आसक्त होते हैं उनसे या उन्हें जकड़ कर रखना शुरू कर देते हैं तो हमें दुख होता है.
If you base your happiness on other things outside you, you will suffer.
तो अगर आपके बाहर की किसी चीज पे आप अपने सुख को निर्भर करते हैं तो आपको दुख होगा.
Yes, you could get pleasure from family and so forth, of course.
तो परिवार और अन्य चीजों से आप आनंद पा सकते हैं.
But if your happiness is entirely dependent on that, you will suffer.
लेकिन अगर आपका आनंद पूरी तरह से उन्ही चीजों पर निर्भर है तो फिर आपको दुख होगा.
Of course, the situation is that we're all attached, huh?
तो ये परिस्थिति है कि हम सभी किसी न किसी चीज से आ सकते हैं.
That's why we suffer.
और इसीलिए फिर हमें दुख होता है.
But the Buddha said this is quite straightforward.
तो बुद्ध कहते हैं लेकिन ये बहुत ही सीधा है.
Your suffering is the result of your attachment.
तो बुद्ध कहते हैं कि आपका दुख आप ही की आसक्ति से निर्माण होता है.
Don't blame anybody else.
तो दूसरे किसी को भी उसका दोष मत दीजिए.
Yes, of course, people need to change their behavior.
तो हाँ निश्चित ही कि लोगों को उनके बर्ताव में बदलाव लाना चाहिए.
But in the end, you have to attend to the fact that you create the conditions for your own suffering.
लेकिन अंत में आपको इस तथ्य को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी कि आपके दुख का कारण आपने या परिस्थितियां आपने स्वयं ही निर्माण की हैं.
I was very impressed recently. I found a copy of a letter that Baba Saheb wrote to a friend.
तो हाल ही में मुझे एक पत्र की प्रति मिली है जो पत्र बाबा साहब ने अपने एक मित्र को लिखा था.
And he talked about the way in which as a child his father had always encouraged them to be content with whatever their circumstances.
तो उस पत्र में वो लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तो कैसे उनके पिता ने जो भी उनके पास था उसमें संतुष्ट रहने के लिए उन्होंने उन्हें बढ़ावा दिया था.
And he said that sometimes his father was quite strict with them.
और वो कहते हैं कि कभी कभी इस बारे में उनके पिता काफी अनुशासित भी रखते
you know, if they'd say, oh, look, you know, so-and-so's got a better house, or why do I have to sleep on the floor?
तो जैसे कभी कभी वो कहते थे कि देखो उनके पास तो कितना अच्छा घर है और क्यों हमको इस पे सोना पड़ता है जमीन पे.
His father would say to him, just be grateful for what you've got.
तो उनके पिता वो उन्हें कहते थे कि आपके पास जो भी आपको मिला है उसके बारे में आप कृतज्ञ रहिए.
And if you lose it, don't complain.
और अगर ये कल आपके पास से चला भी जाए तो इसके बारे में मतलब आप तकरार मत कीजिए.
So he learned from his father this attitude of acceptance.
तो किसी चीज को स्वीकृति देने का ये जो स्वभाव है ये उन्होंने अपने पिता से लिया था.
He learned from his father this attitude of not being attached.
तो किसी चीज से मतलब आसक्त या चिपक कर रहने का ना रहने का ये जो स्वभाव था उन्होंने अपने पिता से सीखा था.
That's why for me he's such a great figure.
और इसीलिए मेरे लिए वो बहुत महान ऐसे व्यक्ति हैं.
You know, I'm not an Indian. I'm not from the background which sees Dr. Ambedkar as a leader.
तो आप जानते हैं कि मैं भारतीय नहीं हूँ या मेरी पार्श्वभूमि भी उस समाज की नहीं है जो समाज बाबा साहब को अपना नेता मानते हैं.
I come from a comfortable western middle class background.
तो बहुत ही मतलब सुविधा में जो जीता है ऐसा पाश्चिमात्य मध्यम वर्ग जो है वहाँ से मैं आता हूँ.
My father was a senior naval officer in the British Navy.
तो ब्रिटिश का जो नौसेना थी वहाँ पे मेरे पिता एक वरिष्ठ नौदल अधिकारी थे.
But I have enormous respect for this very great man.
लेकिन ये जो बहुत ही महान ऐसे व्यक्ति हैं उनके लिए मेरे मन में बहुत आदर है.
And I think what impresses me more than anything is the way in which he was not attached to fame and fortune.
और जो चीज मुझे ज्यादा प्रभावित करते हैं कि किस तरह से वो प्रतिष्ठा या संपत्ति इसके साथ बिल्कुल भी मतलब जुड़े हुए नहीं थे.
He's such an exceptionally gifted man.
तो उनके पास बहुत सी मतलब ऐसी खूबियां थी मतलब.
He could have done anything. He could have had any wealth.
तो वो चाहते उतनी संपत्ति वो कमा सकते थे चाहते वो कर सकते थे.
But he did not let that get in the way of his mission.
लेकिन वो जो अपने ध्येय पे चले थे उसके आड़े आने उन्होंने उसे नहीं दिया.
His mission was to wake India up.
और उनका जो ध्येय था कि भारत को उन्हें जागृत करना था.
To wake it up from the false ideas, the empty ideas that held it down.
तो जो झूठी ऐसी संकल्पनाएं थी जो भारत को नीचे खींच रही थी उससे उन्हें मुक्त करना.
So it's an outstanding example of somebody who didn't cling.
तो ऐसे व्यक्ति जो किसी चीज से आसक्त नहीं थे उसका ये बहुत ही हटकर ऐसा उदाहरण है.
Because well, the Buddha teaches us that if you cling to things, you will suffer.
क्योंकि बुद्ध ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी चीज से चिपक कर या आसक्त रहते हैं तो आपको दुख होगा.
Happiness consists in letting go.
तो चीजों को छोड़ देने में या जाने देने में ही अपना सुख है.
And living at ease, at peace with everything.
और जो भी आपके साथ है उसके साथ सहजता और शांतिपूर्वक रहने में.
That doesn't mean not working hard to create a better situation for everybody.
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हर एक के लिए अच्छी परिस्थितियां निर्माण करने के लिए आप काम करना छोड़ दें.
Just as Baba Sahib did.
जैसे बाबा साहब ने किया था.
Just as the Buddha did.
वैसे ही जैसे बुद्ध ने किया था.
So we want to study the truth in all its aspects.
तो इसलिए सत्य को उसके हर पहलू में हमें समझना होता है.
You could say here I've only talked about one side of it.
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने उसके सिर्फ एक ही पहलू के बारे में चर्चा की.
You need to really study what anicca means.
तो आपको वास्तव में इस चीज का अभ्यास करना होगा कि अनित्यता का अर्थ क्या है.
You need to understand anatta.
तो आपको अनात्म को भी समझना होगा.
You really need to try to practice letting go.
और आपको चीजों को छोड़ देना भी आपको इसका मतलब अभ्यास करना होगा.
You need to recognize dukkha arises from Trishna.
आपको ये जानना होगा कि दुख तृष्णा से निर्मित होता है.
So that's what was meant by the truth in all its aspects.
और यही उसका अर्थ है कि दुख उसके हर पहलू में सर्वांग में.
Yes, anicca. Yeah. But what about the path in all its stages?
तो फिर सर्व स्तर में मार्ग इसका क्या अर्थ है?
It's a long talk here.
तो ये बहुत बड़ा ऐसा प्रवचन है.
But I'll have to just deal with it relatively briefly.
तो बहुत ही संक्षेप में मुझे इसके विषय में चर्चा करनी होगी.
We are here.
तो हम यहाँ हैं.
Each of us is where we are.
तो हम जहाँ हैं वहाँ से हम में से प्रत्येक व्यक्ति है.
The top of the mountain, the Dhamma, is up there.
और धम्म पर्वत के शिखर में वो वहाँ पर है.
We've got to get from here to there.
तो हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है.
So we need a path or way.
तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक मार्ग की आवश्यकता है.
If we can get it, we need a motorway.
You need a
highway.
Okay. और अगर हमें वहाँ पे जाना है तो हमें बहुत बड़ा हाईवे चाहिए.
So there are steps and stages we need to cross in order to get.
तो ऐसे पायदाने हैं या ऐसे स्तर हैं जिन्हें जिनसे गुजर कर हमें वहां तक पहुंचना है.
Each of us needs to progress towards the Buddha.
तो हम में से हर एक को बुद्ध की ओर विकसित होना है, जाना है.
And well, there are many ways of talking about those steps and stages.
तो ये जो चरण है या ये जो स्तर है इसके बारे में बात करने के कई तरीके हैं.
But I'm going to mention just three very important ones.
लेकिन जो तीन बेहद महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ.
First of all, there's the step or stage of Shila.
तो सबसे पहला जो चरण है या पायदान है वो है शील का.
That is trying to act in a way that expresses a positive state of mind.
तो वो इस तरह से कृति करना होता है कि जिससे आपके मतलब कुशल मानसिक अवस्थाएं प्रकट होती हैं.
And that's expressed, of course, by our five precepts.
तो ये जो है हमारे पांच शीलों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है.
So you try to work on your behavior.
तो आप अपने आचरण के ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं.
And when you work on your behavior, your mind becomes more calm.
और जब आप अपने व्यवहार के ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं तो आपका मन बहुत शांत होना शुरू करता है.
Then you work on meditation, on samadhi.
तो जब आप ध्यान पे या समाधि पर कार्य करना शुरू करते हैं.
And when your mind is very, very still, very, very clear, then you can see the truth.
और जब आपका मन बहुत शांत हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, तब आप सत्य को देख सकते हैं.
That is, you develop prajna.
इसका अर्थ होता है कि आपने प्रज्ञा का विकास किया है.
So you need to complete each of these stages before you can complete the one that succeeds.
तो इसका अर्थ होता है कि आपको अगला चरण जो आने वाला है उसके आने के लिए उसके पिछले चरण को पूर्ण करना होता है.
You need to complete the stage of Shila before you can complete the stage of Samadhi.
तो अगर आपको समाधि का चरण पूरा करना है तो उसके पहले आपको शील का चरण पूरा करना होता है.
You need to complete the stage of Samadhi before you can complete the stage of Prajna.
तो अगर प्रज्ञा का चरण आपको समाप्त करना है तो उससे पहले आपको समाधि के स्तर पे आना होता है.
As you follow the path, you will change and you will have to practice in a new way.
तो जैसे आप इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो आप एक एक स्तर को खत्म करते जाएंगे और आप नए तरह से आचरण करना, अभ्यास करना शुरू करेंगे.
So you need to understand that path.
तो आपको इस मार्ग को समझना होता है.
Then you can follow it.
और तभी आप इस मार्ग का अनुसरण कर सकेंगे.
And you do that by studying, practicing, realizing.
और ऐसा आप अभ्यास के माध्यम से, आचरण करने के माध्यम से और उसे जानने के माध्यम से कर सकते हैं.
So first of all, you study it.
तो सबसे पहले आप इसका अभ्यास कीजिए.
Just as I am helping you to do right now.
तो जैसे इस वक्त मैं आपको ये करने के लिए मदद कर रहा हूँ.
You get a clear conceptual knowledge of the path.
इस मार्ग का जो आपको तत्वज्ञानिक जो स्वरूप है वो आपको पता चला है.
You get a clear conceptual understanding of the truth.
तो सत्य की संकल्पना क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी स्पष्ट समझ आ गई.
If you don't have that clear understanding, well, you'll go wrong when you try to apply it.
तो अगर आपको ये स्पष्ट समझ नहीं है और अगर आप उस पे चलना चाहेंगे तो शायद आपसे गलती हो सकती है.
You don't need a lot of knowledge.
तो आपको बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है.
I probably told you enough in these three sessions to get you to enlightenment itself.
तो इन तीन सत्रों में मैंने आपको इतना तो पर्याप्त बता दिया है कि आपको बुद्धत्व भी प्राप्त हो सकता है.
In fact, I probably told you more than enough.
और जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक मैं आपको बता चुका हूँ.
If you really understood just the one word anicca, you'd awaken.
तो अगर आपको अनित्यता ये एक शब्द भी पता चल जाता है तो भी आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है.
But of course, fortunately for me, because I like to speak, you haven't yet.
तो और मेरे लिए सदैव से और क्योंकि मुझे बोलना भी पसंद है आपको अभी तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है.
And Bharti likes to translate.
और भारती को अनुवाद करना पसंद है.
So yes, we need to study the Dhamma.
तो हमें धर्म का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है.
Really get clear about its basic teachings.
तो उसके जो मूल शिक्षा है उसके बारे में स्पष्ट होने की भी आवश्यकता है.
It's basic teaching about the truth and about the path.
तो उसके सत्य की जो मूल शिक्षा है और मार्ग की जो मूल शिक्षा है उसके विषय में.
The rest is just icing on the cake.
और बाकी जो बच जाता है वो जो केक के ऊपर हम क्रीम लगाते हैं उसे सुंदर बनाने के लिए वो सब बाकी रह जाता है.
I don't know whether that metaphor translates into an Indian context.
तो भारतीय संदर्भ में इस रूपक का अनुवाद हो सकता है या नहीं मैं नहीं जानता. बट वी डू ईट केक अ लॉट ना सो वी
एंड अ लॉट ऑफ वेरी स्वीट शुगर ऑन द टॉप बट द केक इज द मेन थिंग.
लेकिन वो क्रीम नहीं वो जो केक रहता है वो प्रमुख बात होती है.
सो आई हैव गिवन यू द केक.
तो मैंने आपको केक दिया है.
इफ यू कम अगेन आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्रीम बट द केक इज द मेन थिंग.
तो अगर आप वापस आते हैं तो मैं बहुत सारी क्रीम भी आपको दूंगा लेकिन केक मुख्य है.
सो वी नीड टू स्टडी द केक.
तो हमें केक का अभ्यास करना है.
द ट्रूथ द पाथ.
तो सत्य का मार्ग का.
But study is not enough.
लेकिन केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं है.
I know many, many Buddhologists at Western universities who know far more about Buddhism than I do.
तो बहुत सारे ऐसे बौद्ध ज्ञानियों के विषय में जानता हूँ मैं पश्चिम में जो मुझसे भी कई अधिक जानते हैं बुद्ध के बारे में.
They can tell you all this person said that person said this word comes from that word and so on.
तो वो आपको बताएंगे कि ये इस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस व्यक्ति ने वैसा कहा ये शब्द वहां से आता है वो वहां से आता है और ऐसी कई बातें.
But they never think of applying it to their own lives.
लेकिन अपने स्वयं के जीवन में उसे लाने का वो कभी प्रयास नहीं करते.
It's just a way of earning a living.
तो उनके लिए वो केवल एक अपना जीवन जीने का साधन जुटाने की वो बात है.
What we study, we must put into practice.
तो जो भी हम अभ्यास करते हैं उसका हमें अभ्यास आचरण में लाना चाहिए व्यवहार में लाना चाहिए.
What I've been saying, we need to apply to our own life and experience.
तो जो भी मैं कहता हूँ मेरे खुद के जीवन में और अनुभव में मुझे वो व्यवहार में लाना चाहिए.
And of course, if we do that, if we practice, we will realize.
और अगर हम ऐसा करते हैं हम अभ्यास करते हैं तो हम उसे जान भी लेते हैं.
Anicca will not just be an idea.
तो अनित्यता फिर ये आपके लिए केवल एक कल्पना बनकर नहीं रहेगी.
We'll see it directly for ourselves.
तो हम खुद के लिए प्रत्यक्ष रूप से उसे देख लेंगे.
And we'll live on that basis.
और उसके आधार पे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे.
Anicca will not just be a nice philosophical idea.
तो अनात्म ये आपके लिए केवल एक बहुत सुंदर तत्वज्ञान बन के नहीं रहेगा.
It will be something we know in our bones.
तो हमारी खुद के अंतरात्मा में या हड्डियों में कहते उसे जान लेंगे हम.
We'll know it directly.
हम उसे प्रत्यक्ष रूप से जान लेंगे.
Without the brain necessarily being involved.
और दिमाग उसमें जुड़ा हुआ हो उसके साथ ये कोई आवश्यक नहीं.
We'll understand the relationship between clinging and suffering directly.
तो तृष्णा और दुख के बीच में क्या संबंध है ये हम प्रत्यक्ष रूप से समझ लेंगे.
And that will mean we live in a completely different way.
और इसका अर्थ होगा कि हम बहुत ही अलग पद्धति से अपना जीवन बिताएंगे.
We'll live very peacefully, very happily.
हम बहुत ही सुख के साथ और बहुत ही शांति के साथ जीवन बिताएंगे.
Full of maitri.
मैत्री से परिपूर्ण.
Devoting ourselves to the welfare of the world.
और पूरी दुनिया के मतलब भले के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे.
So we need not just to study, we need to practice.
तो हमें केवल अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें उसे व्यवहार में लाने की भी आवश्यकता
है. That's what we've been doing in meditation.
और ध्यान के दौरान हम यही सब कर रहे हैं.
Even in our puja.
हमारी पूजा में भी.
We're practicing what we're studying.
तो जो हम अभ्यास कर रहे हैं हम उसका उसे व्यवहार में भी ला रहे हैं.
But then you need to see it directly for yourself.
लेकिन फिर आपको खुद के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना भी होता है.
So this is what following the Dhamma means.
तो यह अर्थ होता है धम्म का अनुसरण करने का.
And I hope that this helps you to see what you must do if you want to really reach the top of the mountain.
और मुझे आशा है कि अगर आप सही में उस पर्वत के शिखर पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये करना है, ये आपने जाना होगा.
The Buddha showed the way.
तो बुद्ध ने राह दिखाई है.
We have to follow it.
लेकिन हमें चलना है.